ओम शांति। सच्चा गीता ज्ञान सुनाने वाली गीता ज्ञान दाता की वरद पुत्री सरस्वती पुत्री आदरणीय गीता दीदी जी का हम एक हाथ की फरिश्ता ताली से अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय गीता दीदी जी विशेष तौर पर ऐसी तपस्विनी आत्मा है जो भट्टी में जहां भी जाते हैं सबकी स्थिति को चार चांद लगा देते हैं। वो फिर चाहे टीचर्स की हो या फिर स्टूडेंट्स की हो या फिर अज्ञानी आत्माओं के योग शिविर हो, सबको आपसे ऐसी युक्तियां प्राप्त होती हैं, ऐसा वाइब्रेशन प्राप्त होता है जो सबकी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो आज इस भट्टी के दूसरे दिन जबकि हम फरिश्ता स्थिति पर फोकस हो रहे हैं, आदरणीय दीदी जी का हमारे बीच आना बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। दीदी जी को बाबा का बने हुए 45 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं। छोटी आयु में ही आपने बाबा को ऐसा अच्छी तरह पहचान लिया, जल्दी ही अपने को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया और इतना तेजी से सेवाओं में आगे बढ़े। थोड़े ही समय में गुजरात में सब जोन इंचार्ज के रूप में बड़ी सेवाएं प्रदान करते हुए बड़े दादी जी ने आपको पसंद किया और हेडक्वार्टर में रखा और ज्ञान सरोवर जब बना तो उसमें आपके द्वारा बहुत विशेष सेवाओं का पार्ट चला, जिसमें अकोमोडेशन के साथ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन देखना और वर्तमान समय शांतिवन में, क्योंकि सेवाओं का बहुत ही विस्तार हो गया है दुनिया में, जो बाबा लाइनें लगने की बात कहते हैं वो अब लगना शुरू हो गई है। तो नीचे आप विशेष सब तरह के जो भी विंग्स आए, जो भी सब भाई बहने ब्राह्मण आए, चाहे बाबा मिलन के टाइम आए, सब में आपकी विशेष सेवाएं रहती है। साथ ही बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग जो अपना है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, आप गुणों की खान हैं। और आज जो विशेष विषय आप हमारे लिए लेने वाले हैं वो है वाणी का संयम और वरदानी वाणी कैसे बने, उस पर दीदी जी विशेष हमको मार्ग प्रदर्शन देंगे। आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। पांडव भवन में अपने घर में बाप दादा का घर सो हम बच्चों का घर, अच्छा लग रहा है ना। मधुबन को घर कहते, पांडव भवन को घर कहते। पिता का रोल, परिवार का अनुभव इस भूमि पर ज्यादा चला। ज्ञान सरोवर को बाबा की यूनिवर्सिटी कहते, परम शिक्षक का रोल, बाबा के ज्ञान की प्रत्यक्षता वहां से हुई। वरना लोग कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान माना आत्मा परमात्मा और विकारों पर विजय, पर बाबा का ज्ञान इतना सत्य है, मूल है, ये विंग्स बनने के बाद हर विंग ने जो बाबा के ज्ञान से ही अलग अलग कोर्स विकसित किए तो लोगों की बुद्धि में ज्ञान बैठने लगा। और एक टीचिंग मेथड, वरना ज्ञान का सिस्टम एक ही था, लेकिन एक टीचिंग मेथड से ज्ञान देना, वो विंग्स और ज्ञान सरोवर बनने के बाद शुरू हुआ। लोग बाबा के ज्ञान से प्रभावित होने लगे और शांतिवन को क्या कहते हैं, सतगुरु का दरबार। वहां अखंड सत्संग चलता ही रहता है, बाबा का बेहद का दरबार। बाबा की दृष्टि से शक्ति लेते रहते और बहन जी खुदा दोस्त की बात कर रही थी, देखने कहा कि पीस पार्क खुदा दोस्त का है क्योंकि वहां प्लेग्राउंड है, खेलते हैं, पिकनिक करते हैं, घूमते हैं, खुदा दोस्त। और कहते हैं हॉस्पिटल सर्जन धर्मराज जो कहो, बाबा के साथ सर्व संबंध है। खास मधुबन आप सबका आना हुआ है तपस्या के लिए, शांति से रहने का मौका है और इस भूमि में नंबर वन आत्मा की तपस्या के वाइब्रेशन है ना। बाबा मम्मा दादियां संपूर्णता के वाइब्रेशन, इस भूमि पर बाबा संपूर्ण हुए, मम्मा संपूर्ण बनी। और जब हम सभी कारोबार से फ्री होकर के आते हैं और तपस्या के लक्ष्य से आते हैं तो नेचुरली बुद्धि समेटी हुई रहती और कुछ देखना घूमना वो बुद्धि में नहीं रहता है, मन समेटा हुआ रहता है, स्व में एकाग्र रहता है। और ये मौका है साइलेंस में रहकर स्वदर्शन करने का, ज्ञान में चलना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, बेशक बड़ी बात है दुनिया की तुलना में, लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। जरूरी है कि हम साइलेंस में बैठकर ये देखें कि लक्ष्य की ओर चल रहे हैं हर कदम, मंजिल की ओर जा रहा है, चल तो रहे हैं पर सही ट्रैक पर चलना और मंजिल की ओर चलना ये जरूरी है। हर कदम, हर क्षण, हर वर्ष हम अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य तो सदा सामने रहता है ना। बाबा साकार मुरली में भी कहते हैं, हिस्ट्री हॉल की बात करते हैं ना, कि बाबा सामने लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट रखते थे, अभी भी था है शायद अभी भी, कि रोज लक्ष्य दिखाई दे। बाबा ये भी कहते हैं कि अपने बेडरूम में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो कि हम ये बन रहे, अपनी पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, बार बार देखो कि हम ये बन रहे हैं। जब भी बाबा के सामने आकर बैठते हैं क्लासरूम में, तो भी बाबा कहते हैं ऐसे ही आकर नहीं बैठो, लक्ष्य पूर्वक बैठो, कि ये हम सब कुछ क्यों कर रहे, तो हम इस ब्राह्मण जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस ब्राह्मण जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। पुरुषार्थ सफल तब माना जाता है जब लक्ष्य सिद्ध हो। हमें खुद ये महसूस हो कि पुराने शरीर में मैं आत्मा नई बन रही हूं। शरीर पुराना है पर अंदर ही अंदर ज्ञान और योग से मैं आत्मा रिजुवनेट हो रही, नई बन रही। पहले खुद को महसूस, बाबा कहते हैं कि अंत में आप में बाप दिखाई देगा, चेहरा तो अंत तक यही रहेगा। बाप कैसे दिखाई देगा? अंदर की स्थिति बाप समान बन जाएगी, चेहरा वैसा ही दिखाई देता है जैसी अंदर की स्थिति। हम अंदर ही अंदर बाप समान बनते जाएं, और जब अंदर की स्थिति बनती जाती है तो फिर वो अभिव्यक्त होती है, बाहर देखने में आती है, अनुभव में आती है। बनते हैं, खुद को महसूस होता है, बनकर व्यक्त होते हैं, दूसरों को महसूस। हमारी अभिव्यक्ति स्थिति की अनेक प्रकार से होती है, मोटा रूप कर्म, कर्म से पता चलता है जब स्थिति सही है जो हमारी अंदरूनी है, वो कर्म के द्वारा दिखती है। कर्म यथार्थ होने लगे, बाबा ने कहा है कि ज्ञान का सब्जेक्ट, पढ़ाई यथार्थ हो रही है उसकी निशानी आत्मा सेंसिबल बनती जाए। समझदार बनते जाएंगे और सेंसिबल आत्मा फिर माया से धोखा नहीं खाए। बाबा के ज्ञान से सबसे बड़ी प्राप्ति दिव्य बुद्धि है। श्रेष्ठ समझ, हर बात की सही समझ बुद्धि में आई। तो नेचुरली कर्म भी यथार्थ हो। योग सही हो रहा है तो कर्मेंद्रिय जीत बनते जाएंगे। कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आएगा, संयम आएगा। धारणा का सब्जेक्ट यथार्थ है, नेचुरल दिव्य जीवन बनती जाएगी, डिवाइन मैनर्स आते जाएंगे। और सेवा यथार्थ है तो खुशी और दुआओं से भरते जाएंगे। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। ज्ञान सत्य है, स्वयं बाबा देते हैं। हम निमित्त बनते हैं दूसरों को ज्ञान सुनाने के। बाबा हमसे कराते हैं ना, सेवा करो। पर जब तुम बच्चे ज्ञान देते हो, बाबा कहते हैं सुनने वाला तुम्हारे चेहरे को देखता है। तुम कुंभकर्ण के चित्र पर समझाते हो कि महाविनाश सामने खड़ा है, सृष्टि अंतिम श्वास पर है। उस समय बाबा कहते हैं वो आपके चेहरे को देखते हैं कि विनाश की बात करने वाले उसमें कितना वैराग्य दिखता है। जब वो वैराग्य नजर नहीं आता है तो वे करवट बदल कर फिर वापस सो जाते हैं। कि ये बातें विनाश की कर रहे हैं, पर इनके चेहरे और जीवन से वैराग्य दिखता है। इसलिए ज्ञान देने की सर्वोत्तम विधि है जीवन से ज्ञान दे, आचरण से ज्ञान दे, आत्म प्रस्तुति उसे कहते हैं कि स्वयं से दिखाना। दादी बहुत सहज शब्दों में रोज पक्का कराती हैं कि मैं 3 बार ओम शांति बोलती हूँ, कहती है ना दादी। पहली ओम शांति माना मैं कौन, मैं कौन। जितने टाइटल्स स्वमान बाबा ने दिए हैं वो महसूस करना, और जब मैं कौन हूं ये रियलाइज हो जाता है फिर कर्म के लिए कुछ भी सिखाने की दरकार नहीं रहती। दूसरी ओम शांति माना दादी कहते हैं मैं मेरा कौन, हा? मेरा कौन, मैं किसकी हूं। बाबा को रियलाइज करना, बाबा को रियलाइज करना हम किस के बने हैं। कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी से संबंध होते हैं है, कितना गर्व महसूस होता है, कितना पावर महसूस होता है। कहते हैं ना फलाना मिनिस्टर मेरे घर के संबंध है, बोलो कोई काम हो तो मुझे कहना, ऐसे कहते हैं। भगवान से कोई काम हो तो हमसे कहना, हम कहे ना, हमारे घर के रिश्ते हैं। भगवान हमारा बाबा है पर बाबा भगवान है ना, उसकी ऊंचाई महसूस हो। बाप बनने से सामान्य नहीं बन जाता है ना, हम लाड में सामान्य कई बार बना देते, पर हमें पता है हमारा बाबा ऊंचे से ऊंचा है। वो महसूसता ही पावर भरती है, गौरव महसूस होता है, मैं कौन और मेरा कौन। ये बार बार रियलाइज करने से तीसरी ओम शांति मुझे क्या करना है ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है। सिखाने की जरूरत नहीं। मन वचन कर्म से हम कैसे होने चाहिए, दादी कहते हैं मैं कौन हूं ये महसूस किया, लाइट हो गए, लाइट हो गए, देह अभिमान का जो मोहरा पहरा वो उतर जाता है, लाइट हो जाता है। वरना रोल को सोच सोच कर हम कितने भारी होते। मैं मां, पति, पिता, ऑफिसर, ये सोच सोच के कितने भारी हो जाते। पर अपने रियल स्वरूप को समझने से लाइट हो जाते। मेरा कौन महसूस करने से माइट आ जाती है, शक्ति आ जाती है। और ये दोनों रियलाइजेशन से कर्म राइट हो जाते। हमारे कर्म यथार्थ होने लगे जैसे ही हम निश्चय बुद्धि बने। कर्म में संयम आ गए, बाबा कहते हैं मनसा में कितने भी तूफान हो कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना, ये साकार मुरली में आता है। और हम ब्राह्मण आत्माओं में वो शक्ति आ गई है। कर्म में विकारों पर विजय पाया है, कर्म में ब्रह्मचर्य है, कर्मेंद्रियों से गुस्सा नहीं करते। और जो भी विकार है, मन में युद्ध होते होंगे, कर्मेंद्रियों पर संयम रहता है, क्योंकि समझ है कि अब हम किसके बने हैं। प्रैक्टिकली भी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कितने बड़े यज्ञ से, कितने बड़े विद्यालय से हम जुड़े। यज्ञ सामान्य नहीं है, भगवान का रचा हुआ है, सत्कार्य हो रहा है। आज सारी दुनिया को हमसे आशा है, अब कुछ कर सकते हैं तो ब्रह्मा कुमारी वाले कर सकते है कि नहीं, ओम शांति वाले कर सकते। सबको उम्मीदें हैं हमारे। आज हम विश्व के गगन में चमक रहे हैं, अब सबकी नजर है हमारे पर। वो दिन थे जब कोई जानते नहीं थे, बाबा कहते तीन पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते थे। आज लोग ऑफर कर रहे हैं, आप लोग आओ और करो सेवा। प्रैक्टिकली हम कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, पता है ना, उनको कितना नशा होता है, हम कौन सी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, हम कौन सी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं? हाँ, भगवान की कंपनी है। भगवान निराकार है, उसने हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। अब कहीं भी हम जाते हैं, व्यक्तिगत अपनी तरफ से नहीं जा रहे हैं। अब आप व्यक्ति नहीं है, संस्था है। अब हम संस्था को रिप्रेजेंट कर, कमी हमारी होती है और लोग क्या कहते हैं, ऐसा सिखाते हैं, ओम शांति में ऐसा सिखाते हैं। नाम किसका आता है सीधा, विद्यालय का, बाबा का। इसलिए ये भी एहसास हो कि प्रैक्टिकली हम कितने बड़े यज्ञ से जुड़े हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, बाबा ने सब कुछ हमें बता दिया है। संपूर्ण सत्य ज्ञान बाबा ने दिया है। हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है। हमारी भूलें लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आप तो ज्ञानी है ना। दूसरों को तो माफ करते हैं पर हमें नहीं माफ करते कि आप तो ज्ञानी आत्मा है ना, आप तो भगवान से रोज पढ़ते हैं। ज्ञान में आते ही निश्चय बुद्धि बनते ही कर्म यथार्थ हो गए। 50% चेंज ज्ञान में आते ही हो जाते। कोई एक दिन में बदल गए, कोई 7 दिन में बदल गए, कोई 3 दिन में, 1 मास में, 1 साल में बदल गए। अब इतना लंबा ब्राह्मण जीवन किस लिए है? अब 2 क्षेत्र बाकी हैं, एक है वाचा, वाणी। कर्म में अटेंशन रहता है, कर्म में फिर भी व्यक्ति गलत करने से डरता है, अटेंशन हम सबका रहता है क्योंकि वो ठोस हिसाब बन जाता है। बाबा कहते हैं ना, कर्म में आया माना पत्थर पर लकीर बन गई, हिसाब बन गया, वो चुकाना ही होता है। ना ड्रामा माफ करता है, ना भगवान माफ करता है। इसलिए रोज डिटैच होने की प्रैक्टिस करते हैं, देह से न्यारा रहने का अभ्यास, और ये अनुभूति कर्म में आने से कंट्रोल करती है हमें। ये हमारा नित्य का अभ्यास सामान्य नहीं है, बहुत पावरफुल अभ्यास है। देहभान से न्यारा रहना, इस दुनिया से ऊपर उठना, एक बाबा के सामने अभिमुख होना, ये अभ्यास डिटैचमेंट, उपराम और भरपूरता का अनुभव कराता है। तो कर्मेंद्रिय में प्रभाव नहीं आता, और जो आत्मा अंदर बाबा से जितनी गहरी प्राप्ति करती है, उनका वाणी पर भी संयम आता है। वाणी बहुत बड़ा शस्त्र है, उसका भी अपना प्रभाव है। हम कहते हैं वाणी से प्राणी की परख होती, व्यक्ति कितनी शिक्षित है दीक्षित है वाणी से पता चलता है। कर्म तो कोई लंबा समय साथ रहे तो दिखते हैं, पता चलता है, पर वाणी तो तुरंत पता चलती है। अगर बाबा की याद से जो अतीन्द्रिय आनंद सुख अलौकिकता की अनुभूति हम करते हैं, तो ऑटोमेटिक वाणी पर संयम आता है। ये आपका अपना भी अनुभव होगा, जब बहुत अच्छा योग अभ्यास हम करते हैं, आपको घंटा आधा घंटा तक आवाज में आना अच्छा नहीं लगे, है अनुभव? जब हम बहुत अच्छा योग करते हैं मगन होकर, हम एक घंटा दो घंटा हमें आवाज में आना पसंद नहीं आएगा। कोई जरूरी बात कहनी है हम सार में कहेंगे, क्योंकि अंदर जो सुख है बाबा की याद का, उससे बाहर आना अच्छा नहीं लगता है। तो जरूरी शब्दों में सार में हम बात बताएंगे। हमें दूसरा कोई विस्तार से बातें करें वो सुनना भी पसंद नहीं आता। आत्मा अंदर से अपनी चैतन्यता का विस्तार ऐसा समेट लेती है कि वो सारे रस इंद्रियों के फिर आकर्षित नहीं करते। फिर आपकी आंखें चारों ओर ज्यादा घूमेगी नहीं, क्योंकि देखने का कोई रस नहीं। ज्यादा बोलना पसंद नहीं, याद का आनंद। और हमारे शब्दों में शक्ति भर जाती है। जब सिर्फ मुख नहीं बोलता है पर चरित्र बोलता है तो शब्दों में ताकत आ जाती है। हम कहते हैं ना कि भाई ऊपर ऊपर से कह रहे हो या दिल से कह रहे हो, फिर बाबा जो कहते हैं ना कि तीर लगेगा, आत्मा को टच होगा। फिर भगवान की तरह हमारी भी वाणी बनने लगेगी। बाबा हर बात सिखाता है, समझाता है, महसूस भी कराता है, स्पष्ट कहता भी है। पर आत्मा को अच्छा लगता है, फीलिंग नहीं आती। आपस में कोई कह दे बुद्धू हो तो अच्छा लगता है नहीं, और बाबा कह दे कि तुम बुद्धू थे, कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, पर वो महसूस था कि सच में सही बुद्धि बाबा ने दी। तो शब्दों में शक्ति भरेगी। और हम जानते हैं, बाबा ने बताया है, समय अनुसार मुख से शिक्षा देने का समय नहीं है, बाबा कहता है। और हरेक अनुभव भी करते हैं, अच्छी बात कहे तो भी पसंद नहीं आती। आज की जनरेशन में, अब की आत्माओं में शक्ति नहीं है, सही बात भी नहीं पसंद आती। तो आवश्यक बोलना, वो भी परखना है। साक्षी नहीं है, डिटैच नहीं है, तो हम उस परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं और फिर मुख से शब्द निकलते। कहते हैं ना, रहा नहीं जाता मेरे से, ऐसे कहते हैं ना फिर हम। बाबा दोनों पाठ पक्का कराते हैं कि सभी हमारे अपने हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है, एक ही घर के, एक ही परिवार के, एक ही बाबा के भाती है हम। सभी अपने हैं, पर ये भी पाठ पक्का है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये भी पक्का है। अपनापन भी रखना है, पर डिटैच भी रहना है। अगर ये अभ्यास है तो कहां जरूरी है बोलना है नहीं बोलना है। वो अपने आप समझ भी आती है, संयम भी रहता है। मन मीठा है तो मुख भी मीठा रहे। मन में कड़वाहट आती है तो वाणी भी कड़वी निकलती है। क्योंकि मन में, बाबा कहते हैं ना, चित्त पर अवगुण आया, भूल आई, तो मुख से उस आत्मा के लिए घृणा, नफरत, कड़वाहट, ऐसे शब्द फिर निकलते। लौकिक में मैं समझती हूं हमारा अटेंशन रहता है, क्योंकि एक स्पष्ट डिफरेंस बुद्धि में है कि हम ज्ञानी हैं, ये ज्ञान में नहीं है। तो मुझे लगता है हमारा वहां अटेंशन रहता है लौकिक में, कार्य क्षेत्र में। इसलिए वो बुद्धि से माफ हो जाता है कि भाई जब ज्ञान ही नहीं है तो लोग ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा ही व्यवहार करेंगे। पर हम बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्मा है, तो ऐसे वैसे शब्द नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। पर हमें आपस में भी ध्यान रखना है। अलौकिक परिवार में फिर अलौकिक ही रहना है, यहां फिर आपस में कॉमन नहीं हो जाए। साथ रहते रहते कई बार हम सामान्य हो जाते, परंतु नहीं, हमें अलौकिक ही रहना है। बाबा कहते हैं ना कि कई बार हम कहते हैं कि भी उसने किया ऐसा ना, बोला ऐसा ना, बाबा के बन के, ज्ञानी बन के ऐसा करते हैं, तो हम बातें करते हैं उस पर, बोलते हैं ऐसे शब्द, पर जब दूसरों के लिए हम सोचते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, है ना, जब उनकी भूलें, पाप, गलतियां चित्त पर आती हैं कि ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो हमारा उसके प्रति मन भी बिगड़ता है और फिर वाचा भी व्यर्थ होती है, है ना, बातें करेंगे, ग्लानी करेंगे, निंदा करेंगे। पर उस समय अगर खुद को एहसास है खुद का कि वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये कैसे हैं, नहीं, मैं कैसी हूं, मैं खुद कैसी हूं, मैं भी तो परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी पुरुषार्थी हूं, जब तक पुरुषार्थी है बातें रहेगी, हम संपूर्ण तो नहीं बन गए हैं, ये एक्सक्यूज नहीं, पर एक वास्तविकता कि हम पुरुषार्थ हैं। तो जब खुद की लिमिटेशंस खुद को महसूस होती है कि मैं भी तो इस बात में कमजोर हूं, मैं भी तो संपूर्ण नहीं हूं, तो दूसरों के लिए फिर सोच ही नहीं चलेगी। दूसरों के लिए चिंतन ही नहीं चलेगा। यहां चले तो मुख से बाहर आएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं स्थिति ठीक रखनी है। और समय अनुसार तो बाबा कहते हैं तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे संकल्प में, तुम्हारे शब्दों में शक्ति आनी चाहिए, वरदान दे सके, उस आत्मा को प्राप्ति करा सके। इसलिए बाबा कहते हैं अब मन भी शुद्ध होना चाहिए। ये पहले के महावाक्य 47 वर्ष बाबा के अव्यक्त होने पहले कहे थे कि मन में हो पर कर्म में न हो, पर अब बाबा की अव्यक्त वाणियों में हमें बाबा क्या कहते हैं कि अब मनसा में भी नहीं, जो चीज कर्मेंद्रिय से नहीं करनी है वो मनसा भी नहीं करनी। भाई मुख से ऐसा वैसा नहीं बोलना है तो मन में भी कुढ़ना नहीं है। मन में दो चार सुना देते ना मन ही मन, सामने नहीं सुना पर कोई मन ही मन, जो मुख से नहीं बोलना है वो मन से भी क्यों कहता है। तो अब का पुरुषार्थ है कि जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना है वो मन में भी नहीं करना है, वो मन से भी नहीं करना है। नहीं तो बाबा कहते हैं ना कि किए हुए ज्ञान योग की शक्ति मनसा युद्ध में खर्च हो जाती है। फिर हमें लगेगा कि बाहर पवित्र हूं, ज्ञानी हूं, और अंदर तो मन मैला है, अच्छा नहीं लगेगा खुद को ही। क्यों खुशी नहीं होती, क्यों अतींद्रिय आनंद नहीं होता है? क्योंकि मन, बाबा कहते हैं ना क्लीन माइंड क्लियर इंटेलेक्ट चाहिए, स्वच्छ मन साफ बुद्धि। जब स्थिति में रहेंगे तो जल्दी बोल नहीं पड़ेंगे, दो के बीच में बोल नहीं पड़ेंगे, बिना पूछे बोल नहीं पड़ेंगे, बिना सोचा नहीं निकल जाएगा, सब ठीक हो जाता है। हमें सिर्फ स्थिति को पकड़ के रखना। इसलिए योग ज्यादा चाहिए, अभ्यास ज्यादा चाहिए। तो 5 अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएंगे। स्वयं भी। मस्त हो जाओ। मेरा अपना स्वरूप दिव्य स्वरूप सत्य आत्म स्वरूप सुख आनंद प्रेम से भरपूर स्वरूप निजानंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। निज ज्ञान स्वरूपम मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। मुझे स्वयं में ही आनंद है। खुद में खो जाए। मैं इस शरीर प्रकृति और संसार खेल में होते हुए मुक्त अलिप्त स्वयं के प्रकाश में और सत्यता में राइट साइड घूम जाए। दूसरा अभ्यास बाबा में मगन हो जाना। मुझे कौन मिला है? उससे क्या क्या मिला है? अब बाबा मेरा सर्वस्व बाकी सब कुछ निमित्त मात्र। बाबा ही बाबा। न तन से भटकना नमन से भटकना। मन की आंख से प्यार के सागर सुखदाता रहम दिल कल्याणकारी बाबा को देखते रहना मन ही मन प्यार करना। राइट साइड घूम जाए। तीसरा अभ्यास अब इस दुनिया ड्रामा में साक्षी होकर पार्ट प्ले कर स्वयं के लौकिक अलौकिक पार्ट में ट्रस्टी रहना। मालिक बाबा की श्रीमत अनुसार कर और फिर न्यारा हो जाए। अन्य के पार्ट को साक्षी होकर देखना शुभ भावना रखना। शुभ भावनाओं का सहयोग देना। लौकिक अलौकिक दोनों जहान में कमल फूल रहना। राइट साइड घूम जाए। शेष ब्राह्मण जीवन में मास्टर दाता बनना।
दाता के बच्चे, हम मास्टर दाता है। नैनों से मन के भावों से, विचार और वाइब्रेशन से चेहरे और चलन से, वाणी और व्यवहार से, देना है जो बाबा ने दिया है वही देना है। ज्ञान दें, सुख दें, शांति दें, हिम्मत दें, उमंग भरें, सुख दें, दुआ दे, वरदान दे, इस अंतिम जन्म के संबंधियों को कर्म क्षेत्र के साथियों को अलौकिक परिवार को समस्त संसार को प्रकृति जगत को हम प्रत्यक्ष परोक्ष सबके लिए कल्याणकारी है। हम योगी भगवान का स्वरूप है। राइट साइड घूम जाए। सदा वतन वासी रहे, जहां जाना है वहां योग लगाना है, जिसके साथ जाना है उनके जैसा बनना है। वापस घर जाना है और नई दुनिया में आना है। बैठ जाए।
ओम शांति। कैसी लगी क्लास? शब्द नहीं निकल रहे हैं मुंह से अब। इतनी अच्छी क्लास दीदी की, जैसा दीदी का नाम वैसे ही दीदी ने हम सबके संस्कारों में जैसे एक नया सत्धर्म स्थापित कर दिया आज। उसके लिए दीदी के, दीदी से एक हाथ के लिए एक हाथ की ताली से धन्यवाद। बहुत जरूरी है ऐसा ज्ञान हम सबको लेना, क्योंकि जीवन में सब खुशी ही तो चाहते थे, और उस खुशी के लिए कहा जाता है कि खुशी का अर्थ है स्थिरता। और उसमें भी आचरण की बात तो अब तक सिखाई गई, लेकिन उच्चारण का कितना बड़ा महत्व है ये आज हमें मालूम पड़ा। तो जितना योग की गहराई उतना वाणी में संयम माता जाएगा, और जितना वाणी में संयम उतना रिश्तों में समरसता आती जाएगी, और कर्म इंद्रियों पर जो राज्य करेगा। कल शुक्ला दीदी की क्लास थी तो शुक्ला दीदी ने क्या कहा था, कर्म इंद्रियों पर जो राज्य करेगा वही विश्व राजन राज्य अधिकारी बनेगा।